हे अत्यंतात्मीय मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज अंतिम दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और वन क्षेत्र, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले दूसरी खबरों को आइए देख लेते हैं। आज के अखबारों में एक खबर है, न्यूज में भी एक खबर थी कि हमारे नीति आयोग ने जो SDG होता है, तो इस दिशा में राज्यों ने क्या प्रगति की है, इसका एक सूचकांक जारी किया है। SDG जिसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको ध्यान होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पहले मिलेनियम गोल निर्धारित किया था जो 2015 तक का था, और 2015 के बाद फिर उसने 17 गोल्स निर्धारित किए हैं जो 2030 तक के हैं। इसे ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि हम डेवलप करेंगे अपने आप को, लेकिन वो डेवलपमेंट हमारा सस्टेनेबल होगा, यानी कि धारणीय होगा। वह विकास एक ऐसा विकास होगा जो सतत रूप से चलता रहेगा। तो इसको लेकर के भारत सरकार ने भी अब जो हमारे राज्यों की स्थिति है उसके ऊपर इंडेक्स जारी करना शुरू किया है। तो इस बार इस इंडेक्स के जो टॉप पर है वह केरल है। केरल, उसे 100 में से 70 अंक मिले हैं, और खासकर जो अंकों का निर्धारण किया जाता है उसके लिए जो क्षेत्र चुने गए हैं, सामान्य तौर पर ही मैं बता देता हूं, वो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्रों में राज्यों ने जो प्रगति की है उसको आधार बनाया जाता है। तो केरल टॉप पर है 70 अंकों के साथ में, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है उसे भी 70 अंक मिले हैं। तो आप कह लीजिए कि राज्यों की दृष्टि से केरल टॉप पर है और यूटी यूनियन टेरिटरी की दृष्टि से चंडीगढ़ टॉप पर है। जो बिहार है वो उसका स्थान सबसे नीचे है, 28वें स्थान पर है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि इस बार जो इंडेक्स जारी किए गए हैं वो पिछले साल के इंडेक्स की तुलना में बेहतर स्थिति बता रहे हैं। मतलब सभी राज्यों ने पिछले साल की तुलना में कुछ न कुछ बेहतर काम किए हैं। दोस्तों, इसके बाद जो दो अगली खबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा भी कर चुके हैं कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति होनी थी वो हो गई है, और हमारे जो जनरल BP रावत जी हैं उन्हें प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। जनरल बिपिन रावत, ये आपके नाम, मुझे ये नाम आपके दिमाग में दर्ज हो जाना चाहिए, और खासकर जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिहाज से। अब दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, यानी कि जो काम होंगे उनके बारे में, क्योंकि इस बिंदु पर हम लोगों ने इससे पहले कोई चर्चा नहीं की है। पहला तो यह है कि तीन बड़े उद्देश्य इनके हैं, या कह लीजिए कि तीन बड़े काम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के होंगे। पहला तो ये है कि जो आर्मी, मतलब पूरी के पूरे हमारी सेना के जो तीनों विंग हैं इनका प्रशिक्षण होता है, यहाँ सामान की खरीदारी होती है, स्टाफ होता है, और जो ऑपरेशंस होते हैं उन सबको एक ज्वाइंट रूप देना, यानी कि सब मिलकर के ये काम करेंगे। दूसरा जो काम होगा वो है कि राजनीतिक नेतृत्व के लिए सैनिक सलाह में गुणवत्ता लाना। देखिए, किससे युद्ध होना है, किससे कब युद्ध खत्म होना है कि नहीं होना है, ये सारे निर्णय राजनीतिक स्तर पर लिए जाते हैं, है ना। ये सेना निर्णय नहीं लेती, लेकिन निर्णय बहुत सही हो, बहुत एप्रोप्रिएट हो, तो इसकी सलाह अगर कोई सैनिक देता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण सलाह होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी वो बढ़ जाएगी, उसकी व्यावहारिकता बढ़ जाएगी, तो उसमें गुणवत्ता लाना। और जो तीसरा काम होगा वो है कि सैन्य मामलों में विशेषज्ञता लाना। और देखिए, विशेषज्ञता तभी आ सकती है जब जो मामले हैं उनको देखने वाला व्यक्ति सैन्य सेवा से जुड़ा हुआ हो। और आप देख रहे हैं कि हमारे जो बिपिन रावत जी हैं वो हमारे देश के नौसेना प्रमुख रहे हैं। यहाँ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मैं और ऐड करना चाहूंगा, और वह है मित्रों की जो हमारे परमाणु कमान की स्थिति थी उसमें भी अब थोड़ा बदलाव आया है, और जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं तो परमाणु कमान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, और आपको मालूम है कि जो परमाणु बटन दबाने का जो मामला होता है, परमाणु युद्ध शुरू करने के बारे में आप कह लीजिए, तो प्रधानमंत्री के पास होता है, उसके दो विंग होते हैं, एक हमारा राजनीतिक विंग है जिसमें प्रधानमंत्री हैं और राजनीतिक काउंसिल आप कह लीजिए, जो और दूसरी काउंसिल होती है वो कार्यकारी काउंसिल होती है, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो हेड होते हैं वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। अब उसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है, उसमें अब बिपिन रावत यानी के चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो ये जानकारी आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में अभी तक जो जानकारी थी उसमें ऐड करना मैं जरूरी समझ रहा था। तीसरी जो खबर है दोस्तों वो दो तीन दिन पहले ये खबर आई थी और वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लेकर के थी, सुशासन किन राज्यों की क्या स्थिति है। उसके तहत जो साउथ के राज्य हैं वो काफी बेहतर स्थिति में है। तीन जो शुरू के राज्य हैं देखिए वो कौन है, तमिलनाडु का गुड गवर्नेंस सबसे टॉप पर है, इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद कर्नाटक है। तो ये तीनों हम साउथ में देख रहे हैं। आप कह लीजिए कि महाराष्ट्र ठीक है, साउथ का थोड़ा सा उत्तरी भाग हो जाता है ऊपर का, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य को रखा गया है। तो खासकर चूंकि गुड गवर्नेंस के बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और आज का मुख्य विषय है CO2 का उत्सर्जन और वन क्षेत्र। इस विषय को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इसका संबंध अभी करेंट अफेयर्स से है। मैं आज आपको हिंदुस्तान का एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं और उस एडिटोरियल कमेंट में एक दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही गई हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आप यूं कह लीजिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है कहा जाता है कि जो 60% ग्लोबल वार्मिंग में के लिए जो जिम्मेदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर वो एक बार वातावरण में आ गई तो पता नहीं कितने साल तक वो रह सकती है, रहती ही है। और इसको खत्म करने का जो सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है वो केवल यही कि उसका अवशोषण किया जाए, उसको एब्जॉर्व किया जाए। अब एब्जॉर्व इसको कौन कर सकता है? आप जानते हैं कि एब्जॉर्व करने के लिए जो सबसे बड़ा साधन इस प्रकृति में है वो है हमारे पेड़ पौधे वृक्ष। वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन दोनों बातों को लेकर के एक दो जो नए फैक्ट सामने आए हैं उन्हीं को आधार बना करके मैंने आज अपना मुख्य विषय का निर्धारण किया है। तो जो हिंदुस्तान का जो एडिटोरियल कमेंट है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, सामान्यतः यह सूचना बहुत वेल नोन नहीं है। वो ये है कि अब हम 4G से 5G की ओर बढ़ रहे हैं इंटरनेट के मामले में। अभी जो इंटरनेट है उससे जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो 3.5% है, 3.5% 3.5% आप देखिए, राइट, ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 2025 तक इसके 20% तक की संभावना है। तब तक दुनिया की, मतलब यूं कह लीजिए कि जो 20% ऊर्जा खपत है वह इंटरनेट पर होगी, ऊर्जा की खपत। और जब ऊर्जा की खपत बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि उसका जो कार्बन उत्सर्जन है वो और ज्यादा हो जाएगा और 2040 तक ये बढ़कर के लगभग 24% हो जाएगा। आप कल्पना करके देखिए कि कितना अधिक कार्बन का उत्सर्जन होगा, क्योंकि 5G के आ जाने के बाद एक तरह से कहा माना जा रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया में आंकड़ों की सुनामी आ जाएगी। फिर तब उन आंकड़ों की प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा बड़े, ज्यादा क्षमता वाले और ज्यादा संख्या में सर्वरों की जरूरत होगी और ये जो सर्वर हैं वो सही मायने में ऊर्जा खपत के मामले में सबसे आगे होंगे। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है वो आगे चल करके और अधिक बढ़ने वाला है, ये इसका एक पक्ष हो गया। इसी के साथ ही एक दूसरी अच्छी खबर भारत के संदर्भ में आई है और भारत के संदर्भ में ये कि अभी हमारे यहां इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी किया गया। आज के अखबारों में आपको ये पढ़ने को भी मिलेगा और न्यूज में भी ये बकायदे थी। इस रिपोर्ट की जो राहत देने वाली बात है वो ये है कि भारत में लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर, एग्जैक्ट है 5188 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट 2 सालों में बढ़ा है। देखिए, सामान्य तौर पर फॉरेस्ट का विनाश हो रहा है, उन्मूलन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि भारत में 2 वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है। और एक उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें से 1120 वर्ग किलोमीटर डेंस फॉरेस्ट है, सघन वन है, घने वन है। और इस तरीके से अब भारत में जो कुल वन क्षेत्र है लैंड का, वो 25% हो गया है। आपको ध्यान होगा कि जो हमारी फर्स्ट आजादी के बाद जो पहली वन नीति बनी थी 1952 में, उसमें यह कहा गया था कि सकल जो वन हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसमें 1/3 फॉरेस्ट होना चाहिए। तो अब हम 25% पर पहुंच गए। 33% पहुंचने में थोड़ा सा समय है, लेकिन अगर इसी तरह से वन क्षेत्र बढ़ते रहे तो डेफिनेटली इसमें भी सफलता मिलेगी, हम तो 33% तक पहुंच जाएंगे। और अगर वन क्षेत्र ज्यादा हुए तो उससे फिर मदद मिलेगी CO2 को सोखने में। एक अच्छी खबर ये भी है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें भी वृक्षों की संख्या में वृद्धि हुई है, या यूं कह लीजिए कि वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। और ये जो वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है, इसके कारण जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको सोखने की क्षमता में 21% की वृद्धि हुई है। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, 21%, क्योंकि आपको मालूम है कि पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत ने ये घोषणा की है कि वो आगे आने वाले 5-7 सालों में कार्बन उत्सर्जन के मामले में अपने को बहुत अधिक वो प्राकृतिक स्रोतों पर ले जाएगा, जिसे हम हरित गैस कहते हैं। हरित गैस न कहे ग्रीन ऊर्जा, हरित गैस ना कह के हम ग्रीन ऊर्जा, हरित ऊर्जा कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि हरित गैस तो फिर वो ग्रीन हाउस गैसेस हो जाती हैं। हरित ऊर्जा की तरफ जा रहा है, हम रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर हम फॉरेस्ट लगा करके कार्बन को सोखने की अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, तो विश्व फोरम पर, वर्ल्ड के फोरम पर, ग्लोबल फोरम पर भारत की जो स्थिति है, खासकर जलवायु परिवर्तन के मामले में, एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि नेतृत्व करने वाले राष्ट्र की स्थिति हो जाएगी। तो मित्रों, ये था मुख्य विषय के बारे में। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो टॉपिक है जिस पर मैंने अभी चर्चा की है, यह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, प्री और मेंस दोनों ही दृष्टियों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, नितेश विश्वकर्मा, विमल कुमार नई दिल्ली से, अनीस अहमद इलाहाबाद से, प्रिया शर्मा, मोहम्मद नौशाद, अनामिका विमल और प्रज्ञा रानी उरानी बिहार से, आप सबका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, शुरू में मैंने कहा था कि आज दिसंबर का अंतिम दिन है, यानी कि कल से 2020, जिसे आप नए वर्ष के नाम से जानते हैं, शुरू हो जाएगा। तो पहली सूचना तो यह कि कल आप सब स्वतंत्र रहेंगे, कल डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। नए वर्ष का आप सब अपने अपने ढंग से पूरे जोश और खरोश के साथ स्वागत करने के लिए मुक्त हैं। खूब उत्साह के साथ नए वर्ष का स्वागत कीजिए, नए रेजोल्यूशन लीजिए, मन में एक नई उमंग ही नहीं बल्कि नए विचारों को भी स्थान दीजिए, ताकि एक नई ऊर्जा पूरे साल भर आपको ताजी बनाए रखे। तो मित्रों, इस नए साल के पूर्व दिवस पर मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह नया वर्ष आप सबके लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला बने। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब मुझे आप सब इजाजत दें, मेरा वर्ष 2019 का अंतिम अभिवादन स्वीकार करते हुए नमस्कार।